इसके सारे जो कितने ही पीढ़ियां हैं वो कभी भी गरीब नहीं होंगे। ये श्री के क्योंकि रुक्मिणी देवी तो लक्ष्मी देवी है, तो इनको ऐश्वर्य तो पीढ़ियों तक मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि इसकी कोई सीमा नहीं, कोई कल्पना नहीं। तो आपने एक कर्ण सुदामा जी के पोह को ग्रहण करके सब उसके इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, इसलिए आपको और ग्रहण करना उचित नहीं रहेगा। तो रुक्मिणी देवी सोच रहे थे कि इतने बड़े राजा हैं, भगवान हैं, उनको ऐसे अन्न थोड़ी ग्रहण देना चाहिए, और एक दृष्टि से सही भी है। तो यहां भी जब हम भगवान को खिलाते हैं हमें भी अच्छे अच्छे चीजें देनी चाहिए, हमारी योग्यता जितनी होती है उतना हमें भगवान को खिलाना चाहिए। तो प्रश्न ये होता है कि अगर भगवान को ऐसे देना चाहिए तो भगवान फिर दही चावल से संतुष्ट क्यों हुए? उसमें क्या स्वादिष्ट था, भगवान ने क्या देखा उस दही चावल में कि वो इतने आनंद से ग्रहण कर रहे थे? उसमें क्या था? प्रेम था, भक्ति था उसमें, और उस भक्ति को भगवान श्री कृष्ण ग्रहण कर रहे थे। इसलिए भक्ति में अमीरी गरीबी के कोई विचार नहीं होते, भले कोई अमीर हो गरीब हो कोई बात नहीं, अगर हम भक्ति से कोई चीज अर्पण करते हैं भगवान को तो भगवान वो चीज ग्रहण करते हैं, भले वो कुत्सित अन्न भी हो जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने 56 भोग भी खिलाया भगवान को लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्योधन का भोग न खायो, रूखा शाक विदुर घर खायो, यह है भगवान। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने सोचा, षड्यंत्र कुछ किया, तरकीब सोची कि भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित करेंगे, अपने यहां बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, अपने पक्ष में ले लेंगे कृष्ण को। पर कृष्ण ने जान लिया, वो तो अंतर्यामी है, कि ये दुर्योधन के हृदय में कोई अच्छी इच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को नकार दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा 56 भोग। कहां गए? विदुर जी के घर में गए। विदुर जी साधारण घर में रहते थे, दासी पुत्र थे, हालांकि धृतराष्ट्र के भाई थे, फिर भी दासी पुत्र होने के नाते थोड़े छोटे जगह में रहते थे। तो रूखा शाक विदुर के घर में खा लिया लेकिन दुर्योधन का भोग नहीं खाया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी इस तत्व को नहीं जानते थे, इससे भ्रमित हो गए कि ये साधारण भोजन भला कैसे खा सकते हैं, क्योंकि हरि तो वैकुंठ के होते हैं, वैकुंठ में तो उनको बड़ा उनके लिए बड़ी दावत चलती है हमेशा। तो इसलिए ब्रह्मा जी सोचने लगे, और इस तरह से ऐसे सोचते सोचते ब्रह्मा जी भगवान के माया जाल में फंस गए। और इस तरह से उन्होंने क्या विचार किया कि अभी मुझे भगवान श्री यही श्री हरि के गुण देखने चाहिए, अगर वास्तव में ये भगवान हैं तो मैं इनका गुण देखना चाहता हूं। इसलिए यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, द्रष्टुम मंजु महित्वम अन्यत, कि मैं इनके सारे गुणों का दर्शन करना चाहता हूं। और इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने तत्वत्सान अर्थात उन वत्सों को, वत्सपान जो वत्सों का पालन करते हैं ग्वाल बालों को, इतः नित्वान अन्यत्र, इधर से उधर स्थानांतरित कर दिया, उस जगह से उठा लिया दूसरे जगह में ले लिया, और दूसरी जगह में ले जाकर क्या किया, अंतर्दधात, अंतर्दधात मतलब उनको छुपा लिया और वो अदृश्य रह गए, ये ब्रह्मा जी ने कर दिया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया, मैंने मेरे योग मेरे माया शक्ति का प्रभाव दिखा दिया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अभी वही खुद माया के भगवान के माया में फंसने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कोशिश किया कि कृष्ण के ऊपर मेरी माया को चलाऊं, लेकिन क्या हो गया, उल्टा वही खुद माया के कृष्ण के माया में फंस गए। ब्रह्मा जी संकट को निमंत्रण दे रहे थे, और संकट ने क्या कहा, अवश्य हम आएंगे, निमंत्रण दे रहे हैं अवश्य आएंगे। जो कोई भगवान के साथ इस तरह से प्रतिकूल भावना से खेलता है तो निमंत्रण तो करता ही है संकट को। जो कोई व्यक्ति अग्नि के साथ खेलता है तो अग्नि को कुछ नहीं होगा, अग्नि को चोट पहुंचेगी, किसको चोट पहुंचेगी, जो व्यक्ति खेल रहा है उसको चोट पहुंचेगी। तो ब्रह्मा जी ये नहीं जानते थे कि वो अग्नि के साथ खेल रहे हैं, और आगे चल के उनकी उंगली बुरी तरह से जलने वाली है, ब्रह्मा जी को ये ज्ञात नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी अभी सोच रहे हैं कि अभी मैंने अभी बहुत बड़ा काम कर लिया, ये अभी देखते हैं ये कृष्ण क्या है। तो कवि कर्णपुर बताते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है, जबकि वो सागर को नापने का प्रयास करता है किसी फुट रूलर को लेकर, 6 इंच का नाप जो होता है या 12 इंच का जो विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं स्कूल में पाठशाला में, उससे कोई व्यक्ति सागर को नापने जाए तो उपहास का पात्र बनेगा। या तो फिर कोई आकाश को नापने के जाए अपनी उंगलियों से, 1 2 3 नापा जा सकता है वैसे आकाश, तो वो भी व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाएगा। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण के माया को, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव, उनकी शक्ति को नापने का प्रयास कर रहे थे अपनी माया शक्ति से। उनकी माया शक्ति कितनी थी ब्रह्मा जी की? जैसे 6 इंच, 1 फुट। और भगवान की शक्ति कितनी? जैसे कि सागर, कोई तुलना नहीं। जुगनू में और सूरज में समानता तो है ना? क्या समानता है? दोनों प्रकाश देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? बहुत ज्यादा। उसी तरह से ब्रह्मा जी में और भगवान श्री कृष्ण में भी समानता है। ब्रह्मा जी की भी माया शक्ति है, कृष्ण भगवान की भी माया शक्ति है, लेकिन अंतर दोनों का कितना है? बहुत ज्यादा है। क्योंकि ब्रह्मा जी को माया शक्ति कहां से मिलती है? भगवान श्री कृष्ण से मिलती है। इसलिए ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म संहिता में कहते हैं, भाष्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगत अंड विधान कर्ता गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो कहते हैं कि भास्वान अर्थात सूरज, भास्वान यथा, जिस तरह से अश्म मतलब दिव्य कोई रत्न होता है, हीरा रत्न, शकलेशु स्वयं कियत प्रकट करते हैं, तो जिस तरह से सूरज अपना ही शक्ति या अपने ही प्रकाश एक साधारण पत्थर से, हीरा तो पत्थर होता है ना, तो एक साधारण पत्थर के माध्यम से जिस तरह से सूरज प्रकट करता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति को किसी भी जीव के माध्यम से प्रकट करा सकते हैं, भले वो जीव ब्रह्मा जैसा श्रेष्ठ जीव क्यों न हो, क्योंकि आखिर वो जीव ही है। तो भगवान अपनी शक्ति को किसी जीव के माध्यम से प्रकट करा सकते हैं, और ब्रह्मा जी को उन्होंने ऐसी शक्ति प्रदान की है। तो ब्रह्मा जी के पास जो माया शक्ति आई, वो भी तो भगवान श्री कृष्ण ने ही दी थी। तो ब्रह्मा जी ये भूल गए, ये शक्ति मुझे कहां से आई? और उसी भगवान प्रदत्त माया शक्ति से वो भगवान को ही मोहित करना चाह रहे थे। और आखिर में क्या हुआ? तद अंतर्गतो, फिर वो खुद माया के जाल में फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। और उधर कृष्ण भगवान के जो ग्वाल बाल मित्र थे, वो तो भगवान के निजी शरीर के ही विस्तारित रूप है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, स्वयं भगवान के शरीर से विस्तारित हुए ये ग्वाल बाल, केवल उनकी शक्ति नहीं, निजी शरीर के विस्तारित रूप है ये। लेकिन जिन ग्वाल बालों को चुराया ब्रह्मा जी ने, वो कौन थे? यहां शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, देखिएगा पहले ही लाइन में, माया अर्भक, अर्भक मतलब बच्चे, जो ग्वाल बाल, माया अर्भक, ये ग्वाल बाल जिनको ब्रह्मा जी ने चोरी किए, वो सच्चे ग्वाल बाल नहीं थे, माया के ग्वाल बाल थे, भगवान के माया शक्ति से बनाए हुए वो ग्वाल बाल थे। ब्रह्मा जी ने माया के प्रभाव में तो आ ही गए थे। देखिए जिस तरह से क्रमशः ब्रह्मा जी की माया बढ़ती गई, सबसे पहले जब उन्होंने अघासुर को देखा तो थोड़ी बहुत माया में पड़ ही गए, जब उसके बाद में कृष्ण भगवान को भोजन ग्रहण करते हुए देखा तो और भी माया में पड़ गए, और जब ग्वाल बालों को चुराया तो और भी गहरी माया में चले गए। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैंने कृष्ण के ग्वाल बालों को चुरा लिया है, लेकिन वास्तव में किसको चुरा लिया था? माया अर्भकाह, कृष्ण भगवान के माया शक्ति से उत्पन्न हुए ग्वाल बालों को भगवान ने चुरा लिया। असली ग्वाल बालों को वो छू तक नहीं पाए, क्योंकि असली ग्वाल बाल जो है वो भगवान के निजी आनंद चिन्मय रस शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और ऐसे दिव्य लादनी शक्ति का स्पर्श केवल जिस व्यक्ति के हृदय में शुद्ध भक्ति है, अनुकूल भावना है, वही कर सकता है। भला ब्रह्मा जी एक प्रतिकूल भावना लेकर आए थे, वो कैसे इनका स्पर्श कर सकते? उनका अधिकार नहीं था, क्योंकि परीक्षा लेने की दृष्टि से आए थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको मेरे ग्वाल बाल मित्रों को छूने का अधिकार नहीं है। चुराने की बात दूर है, छूने की तक उनका अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया शक्ति से बिल्कुल डुप्लीकेट बनाया ग्वाल बालों को, माया के ग्वाल बाल, और इन माया के ग्वाल बालों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। और कहां ले गए? फिर वो ले गए और कहीं छुपा लिया उनको। जिस तरह से जब सीता देवी का अपहरण हुआ रावण के हाथों, तो वैसे रावण क्या छू सकते थे सीता देवी को? क्यों? सीता देवी तो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, भगवान के पत्नी हैं। रावण जैसा व्यक्ति भला भगवान की पत्नी को छू सकता है अपने हाथों से? क्या यह संभव है? जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, तो उस समय उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जिनका नाम था रामदास, रामदास विप्र। रामदास थे वास्तव में, बड़े भक्त थे प्रभु रामचंद्र जी के। तो उस समय बड़े शोक में थे, वो भाव में थे, भक्ति भाव में, और शोक कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, करे रामदास विप्र, आप इतने दुखी क्यों हो? तो वो कहने लगे कि मैं शोक कर रहा हूं कि हाय हाय, प्रभु रावण ने कैसे सीता का अपहरण कर लिया, कैसे सीता का अपहरण कर लिया, कितने दुख की बात है, बड़े दुख में थे। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय उनको शांत नहीं कर पाए, लेकिन आगे चले अपनी यात्रा में और रामेश्वर पहुंचे। जब रामेश्वर पहुंचे तो वहां मंदिर में उनको तीन ग्रंथ मिले। पता है कौन से तीन ग्रंथ मिले? कोई बता सकते हैं? ब्रह्म संहिता एक था, ब्रह्म संहिता का केवल पांचवा अध्याय जो हम पढ़ते हैं ना, वो भी पांचवे अध्याय के थोड़े ही श्लोक हैं। पांचवे अध्याय में भी और कई श्लोक हैं, जो यहाँ नीचे हमें पुस्तक मिलता है ब्रह्म संहिता, जो हमारे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है। वो किताब केवल ब्रह्म संहिता का पांचवा अध्याय है, और सारे अध्याय लुप्त हो चुके थे, चैतन्य महाप्रभु को नहीं मिले। केवल ये पांचवा अध्याय इस ग्रंथ का मिला जो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। दूसरा ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत, किन्होंने इसकी रचना की? बिल्वा मंगल ठाकुर ने। और तीसरा ग्रंथ मिला कूर्म पुराण। और ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत तो लेकर आए ही, लेकिन कूर्म पुराण उन्होंने पढ़ा, और वहां पे उन्होंने ये पढ़ा कि जिस सीता देवी का अपहरण रावण कर गए थे वो असली सीता देवी नहीं थी, वो माया सीता थी। माया सीता जो कि प्रभु रामचंद्र जी के माया से उत्पन्न हुई थी, असली सीता तो वहीं के वहीं रह गई, उनको तो छू नहीं पाया रावण, लेकिन अदृश्य रूप में रही, क्योंकि लीला करना था ना भगवान को, अगर वो साथ में ही रहते तो फिर कैसे लीला हो सकती। तो जो सीता देवी अशोक वाटिका में थी वो कौन सी सीता थी? माया सीता थी। और जब अग्नि परीक्षा ली प्रभु रामचंद्र जी ने, तो माया सीता ही ने अग्नि में प्रवेश किया, और अग्नि के बाहर जो आई वो कौन थी? वो असली सीता थी। ये हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह कूर्म पुराण में पढ़ लिया, बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी जल्दी से वापस आ गए रामदास विप्र के पास में, और ये दिखाया रामदास विप्र को। और रामदास विप्र के हृदय में जो दुख की ज्वाला हो रही थी वो तृप्त हो गई, शांत हो गए। फिर रामदास विप्र सोचने लगे, हाँ इसका मतलब है कि रावण ने मेरे पूजनीय सीता माता को नहीं छुआ। तो इस तरह से जो रावण जैसे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी भगवान के नित्य पार्षदों को छू नहीं सकते। अब ब्रह्मा जी की तुलना तो रावण से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो देवता हैं, भक्त हैं भगवान के। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी प्रतिकूल भाव लेकर आए थे, परीक्षा की भावना से आए थे, तो उनको भी अधिकार नहीं था भगवान के नित्य पार्षदों को छूने के लिए। इसलिए भगवान ने ऐसे किया। तो पूछा जा सकता है कि फिर वो असली ग्वाल बाल रहे कहां? असली ग्वाल बाल वहीं पर रहे, और न ग्वाल बालों को पता चला। ग्वाल बालों को लग रहा था कि बस एक क्षण ही बीत गया, कृष्ण गए हैं। ग्वाल बालों को यह नहीं पता चला कि एक साल बीत रहा है, और नहीं ब्रह्मा जी को पता चला, नहीं ब्रजवासियों को पता चला, किसी को भी पता नहीं चला कि जो असली ग्वाल बाल है वो वही के वही है। असली सब एक कोने में है, वहां जहां पे थे वहीं पर। यह है भगवान की माया शक्ति। और आगे चल के और दिखाने वाले हैं भगवान माया शक्ति, अभी पूरी नहीं है भगवान की माया शक्ति का प्रदर्शन। इस तरह से ब्रह्मा जी पूरी तरह से माया के प्रभाव में भ्रमित हो गए। इस तरह से आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ततो वत्सान अदृष्टवैत्य पुलने च वत्सपान उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। जब उन्होंने वत्सों को नहीं देखा, अदृष्टवैत्य, उस समय वो लौटकर आ गए। और जब लौटकर आ गए तो उन्होंने देखा कि अभी ग्वाल बाल भी नहीं है। पहले जब जंगल में गए थे ग्वालों को ढूंढने के लिए, गौओं को ढूंढने के लिए, वहां गौए नहीं मिले। तो ढूंढते ढूंढते वापस आ गए तो अब क्या देख रहे हैं? ग्वाल बाल भी नहीं है। पहले गाय गायब हो गए, अभी ग्वाल बाल गायब हो गए। अब जैसे ये सब दोनों गायब हो गए तो खड़े हुए वहां कृष्ण देख रहे थे कि ये क्या हो गया, गाय भी नहीं ग्वाल बाल भी नहीं, ये बड़े अद्भुत बात है। अभी कृष्ण भगवान भगवान तो है लेकिन एक साधारण बालक की लीला कर रहे हैं, और इसलिए वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि मानो एक साधारण बच्चा है, घूम रहा है, बाएं हाथ में दही चावल लिए, दाहिने हाथ में अचार लिए घूम रहा है, कहां गए मेरे मित्र, कहां गए मेरे गैया, घूमे जा रहे हैं। तो अगर पहले से वो दिखा देते कि अरे मुझे मालूम है ब्रह्मा जी ने लिया है, तो फिर वो लीला नहीं हो सकती। तो ऐसे उन्होंने लीला की कि मानो उनको कुछ पता ही नहीं, आकर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्वापि अदृष्टवान्तर विपिने वत्सान पालांश विश्ववेत सर्वम विधि कृतम कृष्ण सहसा वचकाम। ये जो ग्वाल बालों को और गौओं को उन्होंने अदृश्य कराया है, ये किसका काम है? विधि कृतम। विधि मतलब ये ब्रह्मा जी का नाम है, तो ये ब्रह्मा जी के काम है ये। लेकिन थोड़े समय में कृष्ण को पता चला। वैसे कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, उनको भूतकाल में जो हुआ वो मालूम है, अभी जो हो रहा है वो मालूम है, भविष्य काल में जो होना है वो भी मालूम है कृष्ण को। लेकिन फिर भी कृष्ण ऐसे लीला करते हैं कि मानो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मानो अरे हाँ ब्रह्मा जी ने लिया होगा। जैसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं हमारी दैनिक भाषा में, किसी को थोड़ी देर में कुछ चमके, आइडिया आए, ट्यूबलाइट कहते हैं ना। अब भगवान की जो ज्योति है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन भगवान ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे साधारण आदमी ऐसे ढूंढ रहे हैं कहां गए कहां गए। तो इस तरह से बहुत मधुर तरह से भगवान ने अपने बाल लीला का स्वरूप जो है वो बनाए रखा, और अपने मन ही मन में सोच रहे थे ठीक है अभी ब्रह्मा जी की ये चाल है, वो शेर तुम्हें सवा शेर, अब ब्रह्मा जी को दिखाएंगे, अब क्या करना है, अब आगे चल के कृष्ण भगवान अपने माया का प्रदर्शन और करने वाले हैं। और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अभी और आगे चल के माया का प्रदर्शन करने वाले हैं वो हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी?